الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم آپ کے سامنے سلسلہ چشتیہ کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت کا ذکر خیر کریں گے جو اپنی سیرت و صورت حسب نسب ریاضت و مجاہدہ تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے اولیاء کرام میں منفرد اور ممتاز مقام رکھتی ہیں. وہ عظیم شخصیت حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں. آپ کا اسم گرامی سید محمد الحسینی، کنیت ابو الفتح اور القابات بندہ نواز گیسو دراز. آپ کی ولادت باسعادت 4 رجب المرجب 720 ہجری کو صبح کے وقت دہلی میں ہوئی. والد محترم کا نام سید یوسف حسینی راجہ المشہور راجو قتال رحمت اللہ علیہ تھا، جو نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے. آپ حسینی سید ہیں اور 18 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. ابتدائی تعلیم والد محترم سے حاصل کی، اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، تو والد گرامی نے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے داخل کرایا، اور آپ نے 11 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ فرما لیا، اور نہ صرف حفظ فرمایا بلکہ دولت آباد کی ایک مسجد میں آپ نے قرآن کریم سنایا. حفظ قرآن کے بعد شرعی علوم یعنی علوم و فنون کی جانب متوجہ ہوئے، اور اس وقت کے جید علماء سے کسب علم کیا. نہایت شوق، لگن، محنت آپ کے اندر تھی، علم حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو آپ نے بڑے شوق سے دینی تعلیم کا آغاز کیا، اور ہر کتاب بہت غور سے، محنت سے، شوق سے پڑھی. جن جید اساتذہ سے آپ نے کسب علم کیا ان میں قاضی عبد المقتدر بن قاضی رکن الدین شری کندی رحمت اللہ علیہ، مولانا امام حمام تاج الدین بہادر رحمت اللہ علیہ، اور سید شریف الدین کیتلی رحمت اللہ علیہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر علماء سے آپ نے کسب علم کیا، لیکن ان کے نام سر فہرست ہیں. یہ وہ جید علماء تھے کہ جن کی صحبت میں رہنا اور جن سے علم حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دراز مقامات سے آتے تھے. حضرت نے ان سے کسب علم کیا، علوم شریعت حاصل کر لیا، اب طریقت کی جانب متوجہ ہوئے. یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ شریعت کو چھوڑ کر اور پھر طریقت کی طرف جائیں. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو پیر ہونے کے مدعی ہیں، رہبر طریقت ہونے کے مدعی ہیں کہ جی ہم طریقت میں مقام رکھتے ہیں، ہم فلاں چیز رکھتے ہیں، لیکن شریعت کا کوئی علم ان کو نہیں ہے اور کوئی واسطہ ان کو نہیں. تو اب ظاہر ہے جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی طرف جائے گا وہ کبھی بھی ہدایت پر نہ خود ہوگا اور نہ ہدایت پہنچا سکے گا. جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، سب سے پہلے علم شریعت، اس کے بعد علم طریقت. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے وقت کے جید علماء سے کسب علم کیا، علوم فنون، قرآن، فقہ، حدیث، منطق، دیگر کتب آپ نے بڑے شوق سے پڑھی، اور ان علوم میں کمال حاصل کیا. علوم شریعت کی تحصیل کے بعد अब तरीकत की जानिब मुतवज्जो हुए। जाहिर है राह तरीकत में किसी न किसी के दस्ते मुबारक पर बैत करना, किसी के दामन से वाबस्ता होना ये लाजमी अमर है। ये नामुमकिन है कि आदमी बग़ैर पीर के, बग़ैर किसी रहबर के और राह तरीक़त तय करे। चुनाचे असलाफ़ के तरीक़े पर चलते हुए हज़रत ख्वाजा गेसु दराज ने सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही क़ुद्दस सिर्रहू के मुरीद और खलीफ़ा हज़रत ख्वाजा शेख नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत की। आपको अपने पीर मुर्शिद से बड़ी अकीदत और मोहब्बत थी, हम वक्त उनकी खिदमत में हाजिर रहते थे। और हकीकत यही है कि हाजिरी ऐसी चीज़ है कि जो मुसलसल अपने शेख की खिदमत में हाजिर रहता है वही मकामात हासिल करता है, वही दर्जात हासिल करता है और वही राय सलूक में कामयाबी हासिल करता है। हज़रत बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह हम वक्त अपने शेख नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी की खिदमत में हाजिर रहते और पीर व मुर्शिद भी आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। और आपने जब अपने मुरीद की अकीदत और मोहब्बत को देखा तो उलूम व फ़नून असरार व रमूज के दरवाज़े आप पर खोल दिए और खसूसी तवज्जो आप पर फरमाई। इसका अंदाज़ा अब आगे चल के होगा जिन वाक़यात को आप सुनेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका नाम था सैयद मोहम्मद लेकिन लकब गेसु दराज और बंदा नवाज। गेसु दराज की वजह तस्मिया दो वाक़यात बनते हैं। एक वाक़या वो है जो शेख मुहक़्क़िक़ हज़रत शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी नवरल्लाहु मरकज़हू ने अपनी किताब अखबारुल अखियार में बयान फरमाया है। वो फरमाते हैं कि शेख नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी क़ुद्दस सिर्रहू पालकी में सफ़र करते थे। उस ज़माने में एक सवारी होती थी जिसको कंधों पर उठाकर फिर ले जाया जाता था, यानी जो सफ़र करने वाला है वो उसमें सवार होता था, बैठता था, चार आदमी चारों कोनों से उसको उठाते थे और फिर वो चलती थी, उसको पालकी कहा जाता था। शेख मौक़िक़ फरमाते हैं कि हज़रत नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पालकी में तशरीफ़ फरमा हुए, दीगर मुरीदीन पालकी उठाने के लिए आए, हज़रत गेसु दराज जिनका नाम था सैयद मोहम्मद उन्होंने भी आकर पालकी को उठाया। तो गेसु दराज यानी आपके बाल लंबे थे तो आपके बाल जो थे वो उस पालकी में फंस गए और जब उठाया और लेकर चले तो बाल खींचने लगे, यानी इस तरह वो उसमें उलझ गए कि जब तक पालकी को नीचे ना रखा जाए उस वक्त तक बाल नहीं निकल सकते। आपने ये सोचा कि अगर मैं ये बात शेख से कहूँगा पालकी नीचे रखनी पड़ेगी, शेख को ज़हमत होगी, खामोशी इख्तियार की, किसी से तذکرہ नहीं किया, शेख को नहीं बताया और इसी तरह चलते रहे शेख की मोहब्बत में। इतनी मोहब्बत अपने पीर मुर्शिद से थी, अपनी तकलीफ़ का ख्याल नहीं किया कि बाल उसमें उलझ गए हैं जो खिंच रहे हैं और तकलीफ़ हो रही। सारा रास्ता इसी तरह गुजारा और जब ये बात दीगर मुरीदीन को पता चली और शेख को पता चली तो वो आपकी इस अकीदत, आपके इस इश्क और मोहब्बत को देखकर बहुत खुश हुए और हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त एक शेर कहा, फरमाया, हर के मुरीद सैयद गेसु दराज शुद्ध वल्ला खिलाफ नेज के ओ इश्क बाज शुद्ध। तर्जुमा ये है कि जो कोई सैयद गेसु दराज का मुरीद हो गया बखुदा इसमें शक नहीं कि वो पक्का आशिक हो गया। आप खुश हुए कि देखो इसने मेरी वजह से इतनी तकलीफ बर्दाश्त की। ये कहा नहीं कि आप नीचे उतरें, पालकी नीचे रखी जाए, बाल निकाले जाएं, ये सारे रास्ते मेरी मोहब्बत में चलता रहा। और फरमाया कि जो इनका मुरीद हो जाएगा वो समझो इश्क में आला मकाम पर पहुंच जाएगा। एक वाक़ तो ये है। दूसरा वाक़ इस लक़ब गेसु दराज के मुतालिक तज़किरा ख्वाजा गेसु दराज के मुसन्निफ़ ने खैर उन मजालिस के हवाले से लिखा है। वो फरमाते हैं कि हजरत बंदा नवाज ने खुद बयान किया, यानी हजरत ख्वाजा गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान फरमाते हैं। फरमाते हैं कि मैं पहली मर्तबा अपने पीर व मुर्शिद, अपने शेख हजरत ख्वाजा सैयद नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी क़ुद्दसस्सिर्रुह की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख बाला खाने पर तशरीफ़ फरमा थे, हम नीचे खड़े थे और नीचे तीन चार अफराद मौजूद थे। फरमाते हैं कि खादिम ऊपर से आया और उसने कहा कि सैयद मोहम्मद को शेख बुला रहे हैं। तो एक साहब ने कहा कि मेरा नाम सैयद मोहम्मद है, दूसरे ने कहा मेरा नाम, तीसरे ने कहा मेरा नाम। फरमाया जब उसने मुझे देखा तो मैंने कहा मेरा नाम भी सैयद मोहम्मद, तो वो बड़ा परेशान हुआ और वो हम सब को देखकर ऊपर चला गया। जब ऊपर गया तो शेख ने फरमाया सैयद मोहम्मद गेसु दराज, क्योंकि बाल सिर्फ आप ही के लंबे थे, बाकी किसी के बाल लंबे नहीं, तो शेख ने उसी वक्त पहचान लिया था। तो फिर वो खादिम नीचे आया, कहा सैयद मोहम्मद गेसु दराज, तो कहा जब गेसु दराज उसने कहा तो जाहिर है मैं फिर उन सब में मुमताज़ हो गया। वो मुझे लेकर शेख की बारगाह में चला गया और फिर शेख ने अपनी तवज्जो, अपनी इनायात, अपने करम के दरिया मुझ पर बहा दी। तो ये दो वाक़या थे आपके इस लक़ब की, तो आप इसी लक़ब से मशहूर हुए, इसीलिए अक्सर लोग आपका नाम नहीं जानते। हजरत ख्वाजा गेसु दराज बंदा नवाज, इसी लक़ब से आप मशहूर हैं। हजरत ख्वाजा गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह ने उलूम व फ़नून में मुकम्मल दस्तरस हासिल की और तरीक़त में भी जब कदम रखा तो अपने शेख हजरत रोशन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर साया, उनकी निगरानी में रियाजत, मुजाहिदा, चिल्ला कशी, तकवा, परहेजगारी, ये तमाम चीज़ें उन्होंने इख्तियार की और सख्त से सख्त चिल्ले किए। जो कुछ शेख ने फरमाया आपने फौरन सर तस्लीम में खम किया और उनके बताने के मुताबिक जो वज़ाइफ, जो चिल्ले शेख ने कराए, हजरत गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत कामयाबी के साथ वो मुकम्मल की। गोया आपके शेख की मुकम्मल तवज्जो थी आपके ऊपर। उसके बाद जब मसनद रुश्द व हिदायत पर रौनक अफरोज हुए तो आपने दो चीज़ों को साथ लिया, शरीयत और तरीक़त। रहबर शरीयत भी थे, रहनुमाए तरीक़त भी थे, शरई उलूम भी और तरीक़त के असरारुल रुमूज भी। जो ज़ाहिर बीन थे उन्हें शरीयत पढ़ाते थे, जो राह सलूक तय करने के लिए आते थे उन्हें उसी तरह तरबियत देते थे और असरारुल रुमूज से आगाह फरमाते थे। हजरत ख्वाजा गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह साहिब तसानीफ़ कसीरा भी थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने जहाँ पर आपका तज़किरा मौजूद है किताबों में, तो उन्होंने आपकी इल्मियत, आपकी रूहानियत, आपका मकाम मर्तबा और ख़ुसूसन इल्मी मकाम को ज़ाहिर करने के लिए जो किताबों की फहरिस्त दी है, मसलन तज़किरा ख्वाजा गेसु दराज के मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में आपकी 38 किताबों की तादाद लिखी, यानी 38 किताबें जो हैं वो आपने तसनीफ़ फरमाई। ये सिर्फ किताबों की तादाद, इसके अलावा मकतूबात, मलफूजात वो अलहदा हैं जो बाद में आपके मुरीदीन ने जमा किए और बाद में उनको शाये किया। आपने रुश्द व हिदायत के सिलसिले को जारी रखा, तहरीरी तौर पर भी, तकरीरी तौर पर भी। मुरीदीन को तरबियत भी देते थे, तकरीर भी फरमाते थे, वाज़ो नसीहत भी फरमाते थे और उसी में अपने वज़ाइफ, अपने मामूलात भी मुकम्मल करते थे और इसके साथ साथ तहरीरी काम भी करते थे। 38 किताबें आपने तसनीफ़ फरमाईं, मकतूबात मनफूजात इसके अलावा हैं। तसव्वुफ़ की आला किताबों, यानी जो किताबें तसव्वुफ़ में अथेंटिक समझी जाती हैं, और माखज के तौर पर जिन्हें माना जाता है, तो उलमा ने लिखा, सूफिया ने लिखा, जिन्होंने आपके तज़किरे लिखे हैं, कि तसव्वुफ़ की आला किताबों मसलन अवारिफुल मारिफ, फुसूसुल हिकम, रिसाला कुशैरिया, तमहीदात ऐनुल कुज़ा, कुतुल कुलूब, इन पर आपने हाशिए लिखे और बाद किताबों को फारसी जबान में मुंतकिल किया, क्योंकि उस ज़माने में फारसी थी, उर्दू तो उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो उन किताबों को फारसी में मुंतकिल किया, यानी फारसी जबान में उनका तर्जुमा किया, तसव्वुफ़ की उन माखज़ कुतुब को उन पर हाशिए भी तहरीर फरमाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा कर सकें। फिर यही नहीं, कुरान करीम की तफसीर सूफियाना रंग में लिखी, मशारिकुल अनवार का फारसी में तर्जुमा किया और उसकी शरह लिखी। अच्छा, इसमें से अक्सर कुतुब जो हैं वो नापैद हैं, मुरूर अय्याम के साथ साथ वो किताबें जो थीं वो नापैद हो गईं, नसिया मनसिया हो गईं। एक किताब सीरतुन नबी, जिसका जिक्र हमारे सिलसिले अशरफिया के बानी तारिकु सल्तनत महबूब यजदानी हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने लताइफ अशरफी में किया है। हजरत निज़ाम यमनी ने लिखा है कि हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, उनकी इल्मियत और उनकी फजीलत इस बात से पहचानी जा सकती है कि हमारे मखदूम पाक दो मर्तबा उनसे मुलाकात के लिए गुलबर्गा तशरीफ़ ले गए। गुलबर्गा शरीफ, जहाँ पर आपकी खानकाह थी और अब भी खानकाह वहीं मौजूद है और जहाँ पर आप आराम फरमा हैं, वहीं पर आप रौनक अफरोज़ थे। तो आपकी जलालत इल्मी, आपका सूफियाना मकाम, तरीक़त में मकाम और मर्तबा, ये तमाम देखते हुए हज़रत मखदूम समनानी दो मर्तबा गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ ले गए। ख़ुद मखदूम समनानी फरमाते हैं कि मैं आपकी खिदमत में रहता था, हम वक्त मैं वहीं पर ही मौजूद रहता था और कोशिश करता था कि जितना वक्त आपकी खिदमत में गुजर जाए वो कम है। मौजूआत पर सवालात होते थे, मखदूम समरानी ने फरमाया, कुछ इख्तलाफी मसाइल पर भी मैंने उनसे गुफ्तगू की, लेकिन हजरत ने बहुत ठंडे मिजाज के साथ और मुहक्किकाना और तहकीकाना जवाब, इल्म आलिमाना जवाब आपने दिए उन सवालात के, और उसमें ज़रा भी तरद्दुद नहीं किया और ऐसे जवाब दिए कि सारे इख्तलाफात उसमें से ख़त्म हो गए। अच्छा, वो सवालात जो थे सिर्फ इल्मी नौइयत के नहीं थे बल्कि असरारो रुमूस के मुतालिक भी थे, तरीक़त के बहुत से मसाइल, वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद और दीगर चीज़ें जो हैं जिनका तذکرہ भी यहाँ नहीं किया जा सकता, तफसील जिनके बयान नहीं की जा सकती, उन तमाम के मुतालिक भी मखदूम समनानी फरमाते हैं कि मैंने हजरत से सवाल किया और मैंने उनको एक आलिम ही नहीं, आलिम बाअमल और सूफी कामिल मैंने उनको पाया, जो शरीयत और तरीक़त में मुकम्मल, इन उलूम पर मुकम्मल दस्तरस रखते थे। तो हज़रत मखदूम पाक दो मर्तबा वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। आपकी जो कुतुब हैं, अक्सर कुतुब नापैद हैं, इस पर ज़रूरत है कि उन किताबों को तलाश किया जाए क्योंकि बहुत से अहम मौजूआत पर हैं। एक किताब जिसका तज़किरा हम कर रहे थे वो है सीरतुन नबी। हज़रत मखदूम समनानी जब वहाँ पहुँचे तो आप अपनी किताब सीरतुन नबी तहरीर फरमा चुके थे, उसके मुतालिक भी आपने हज़रत मखदूम पाक को बताया और दीगर किताबों के मुतालिक भी बताया कि ये किताबें मैंने तहरीर की हैं, और उन मौजूआत पर मखदूम पाक फरमाते मैंने उनसे कुछ सवालात किए, आपने मुझे जवाबात दिए, और जो इस किस्म के सवालात थे और मसाइल थे कि जो इख्तलाफी थे उन पर भी मैंने आपसे गुफ्तगू की, लेकिन हर मसले का आपने नहायत तसल्ली बख्श जवाब दिया। यकीनन मखदूम पाक की ये इबारत, उनका ये कौल हजरते ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की इल्मी और रूहानी अजमत बयान करने के लिए काफ़ी है। کہ مخدوم پاک خود ایک عالم دین تھے، سبا قرآت کے قاری تھے، حافظ قرآن تھے، عالم باعمل تھے. آپ نے جب ان کے متعلق یہ فرمایا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خواجہ گیسو دراز کا مقام کیا ہوگا. آپ نے ساری زندگی دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزاری، اور جس طرح کی کتابوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی تفسیر بھی آپ نے صوفیانہ رنگ میں لکھی. گویا آپ مفسر قرآن بھی تھے، مترجم بھی تھے، مصنف بھی تھے، مؤلف بھی تھے، مقرر بھی تھے، مدرس بھی تھے، اور کتنی خصوصیات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات میں جمع فرما دی. ہم صرف انہیں ایک صوفی کامل کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ جب کتب کو دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ صاحب تصانیف کثیرہ تھے، اور جب ان کتب کو پڑھا جائے تو پھر آپ کی علمیت نظر آتی ہے کہ آپ نے کیسے کیسے شاہکار آپ کے قلم سے نکلے اور کیسے کیسے شاہکار آپ نے چھوڑے کہ ان کو پڑھ کر ہدایت حاصل کی گئی. اس کے علاوہ ملفوظات، اس کے علاوہ مکتوبات، وہ تو ایک علیحدہ چیزیں ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ جو لوگ آپ کے سلسلے میں خصوصاً سلسلے چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کتابوں کو تلاش کریں، یقیناً وہ کتابیں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گی. اکثر جو ناپید ہو گئی مرور ایام کے ساتھ ساتھ نسیہ منسیہ ہو گئی، تو ان کو تلاش کیا جائے، اور اگر ان کتابوں کی دوبارہ سے تشہیر کی جائے، ان کو دوبارہ سے شائع کیا جائے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اور حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جائے گی. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء کاملین صرف محض چلہ کشی، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، وہ اسی وجہ سے یہ آگے بڑھتے رہے، مقامات پاتے رہے، علمیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. غوث اعظم جیلانی ہوں یا مجدد الفسانی، محبوب ربانی ہوں یا مخدوم سمنانی، یہ جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، آپ ان کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں، آپ ان کی کتب اٹھا کر دیکھیں، تو پتہ چلے گا کہ علمی طور پر بھی ان کا قد کتنا بلند تھا اور ان کا مقام کتنا بلند تھا. کیسی کیسی چیزیں اور کیسے کیسے علمی جواہر پارے ان کے قلم سے نکلے کہ آج بھی اگر ان کو شائع کیا جائے تو ان کی چمک دمک میں لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. حضرت سید محمد خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزاری. تحریر بھی، تقریر بھی، تدریس بھی، اور ریاضت و مجاہدہ بھی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح بھی، یہ تمام چیزیں آپ کرتے رہے، اور ان علوم و معارف کے خزانے لٹانے کے بعد 16 ذی قعد، بعض نے 17 بھی لکھی اور بعض نے 16، اس میں اختلاف، 16 ذی قعد 825 ہجری بعمر 105 سال 4 ماہ 4 دن صبح کو اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی جانب آپ نے کوچ فرمایا. آپ کا مزار مبارک گلبرگہ شریف میں مرجع خلائق ہے. آج بھی مخلوق خدا اس مرد قلندر کی بارگاہ میں حاضری دے رہی ہے اور وہاں سے فیوز و برکات حاصل کر رہی. اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.